पार्वती जी ने उत्तर दिया, गोकुलश्च अस्ति, गोकुल में चली जा, वहाँ गाय चराते हुए उनके पीछे पीछे दौड़ता हुआ तुझे नजर आ जाएगा, चली जा वहाँ। लक्ष्मी जी ने सोचा कि ये मेरे कोई भी तर्क यहाँ काम नहीं किए, व्यंग काम नहीं किए, इनका बराबर मुझे उत्तर मिलता रहा, समानता होती रही। तो फिर लक्ष्मी जी बोली, अच्छा तो बहन देख, तूने जो निर्णय लिया अपने पति के वरण में, मुझे लगता है कि वो तेरा वरण कुछ अच्छा नहीं था। अभी भी मैं तुम्हें समझाती हूँ कि तुम अपने निर्णय को बदल लो। तुमने जिस पति का वरण किया है वो तो अवधूत है, दिगंबर है और अमंगलिक रूप को धारण करने वाला है, चिता की भस्म आदि को, इसलिए तुम अपने निर्णय को मैं समझती हूँ कि अभी भी तुम्हें बदल देना चाहिए। पार्वती जी ने कहा, बहन सुन, तुम कौन हो? बोले, सिंधु सुता, समुद्र की कन्या, सिंधु पुत्री। और मैं कौन हूँ? गिरिराज हिमालय पुत्री, हिमालय पुत्री। और अब जब हम जिसकी पुत्री, मैं हिमालय की पुत्री हूँ और तुम सिंधु पुत्री हो, तो तुम्हारा स्वभाव ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि तुम्हारे पिता का स्वभाव ही ऐसा है, कभी वो घटता है और कभी वो बढ़ता है, कभी चढ़ता है कभी उतरता है, उसमें हलचल है, एकता नहीं है, वो एक नहीं है। इसलिए उनकी पुत्री होने के कारण तुम अपनी बुद्धि के निर्णयों को बदलती रहो। इसीलिए लक्ष्मी चंचला है, निर्णय बदलती रहती है, घर बदलती रहती है, अभी ये घर बाद में दूसरा घर, इस तरह से घर बदलती रहना, ये तुम्हारा पिता का गुण तुम्हारे अंदर आ गया। परंतु बहन, मैं तो हिमालय सुता हूँ ना, हिमालय कन्या हूँ ना, मेरे पिता का स्वभाव स्थिर है, गिरिराज हिमालय अडिग हैं, अस्थिर हैं, और उनकी स्थिरता तो मुझे पिता से प्राप्त है, इसलिए मेरी मति स्थिर है, मैं अपनी स्थिर मति को बदल नहीं सकती हूँ। जो निर्णय मेरा हो गया सो निर्णय मेरा हो गया, मेरे शिव के प्रति जो मैंने निर्णय कर लिया है वो अब बदला नहीं जाएगा। तो कहने का इसका अर्थ, बहुत बहुत सारे व्यंग हैं, उनमें से कुछ मैंने आपको सुनाए। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि कहीं यहाँ शिव तत्व की व्याख्या हो रही है, तो आप ये भेद नहीं कर लेना कि भगवान श्री हरि हर अलग है और हरि अलग है। ये तो केवल एक लीला मात्र का पक्ष है, जो हरि है वही हर है, जो हर है वही हरि है, भगवान हरि हर में अभेदता है, यहाँ कोई भेद नहीं है। तो भगवान शिव स्वयं सृष्टि के कार्य के लिए स्वयमेव ही अपनी माया को जब स्वीकार कर लेते हैं, तो माया के वशवर्ती अर्थात जो शुद्ध सात्विक शक्ति है उसके वशवर्ती ऐसे दिखाई पड़ते हैं कि भगवान शंकराचार्य कहते हैं, चिदाभस्मा लेपो गरल वसनम दिप्पट धरो, हे प्रभु आपने आपने अपना वेश ऐसा बनाया हुआ है, चिदा की भस्मी को धारण करते हैं, दिशाओं को पट बनाकर पहनते हैं, चिदा भस्मा लेपो गरल वसनम दिप्पट धरो, और सर्पों को गले में धारण करते हैं, देखने में आपका रूप बड़ा ही अमांगलिक दिखाई पड़ता है, अशुभ रूप, परंतु आपको एक भिखारी अशुभता कैसी दिखाई पड़ती है? बोले जैसे कोई भिक्षुक बना ले। परंतु आपको पदवी क्या मिली है? आपको पदवी ये मिली है कि आपको जगदीश्वर की उपाधि से आपको सुशोभित है, आपके पास जगदीश्वर की पदवी प्राप्त है, आपको जगदीश्वर की उपाधि जो मिली है भगवान शिव को जगदीश्वर कहते हैं, जगत के ईषण करने वाले, जगत का शासन करने वाले, जगत पर जिनका शासन चले उनका नाम है जगदीश्वर। बोले प्रभु आपको जगत शासन करने की जो उपाधि मिली हुई है जगदीश्वर की, आपको पदवी जो प्राप्त हुई है वो किसके कारण हुई है? भवानी त्वत्पाणी ग्रहण परिपाटी फल इदम। हे भवानी, आपने जो भगवती महाशक्ति का पाणी ग्रहण जो स्वीकार कर लिया, माँ कने आपका हाथ जो पकड़ लिया, जिसके कारण आपको ये पदवी प्राप्त हो गई। तो कहने का भाव ये था कि भगवान शिव स्वयं वही अपनी शक्ति को अपने से अलग करते हुए, स्वयं अपनी शक्ति की सत्ता को जब स्वीकार कर लेते हैं तो वो शिव शंकर के रूप में प्रकट होकर, उजागर होकर के इस सृष्टि के जगदीश्वर कहलाते हैं। और शक्ति सहित जो शिव है वो जगदीश्वर है, जगत का शासन करने वाले। तो जगत शासन को चलाते हुए भगवान शिव को ये प्रलय की लीला करनी होती है, और जिसके कारण वो तमोगुणी लीला के कारण भगवान शिव को तमोगुणी देव कहा गया है। और शिव अत्यंत जो शुद्ध है, नित्य है, शुद्ध है, अर्थात जिनमें कोई गुणों का विकार नहीं है, वो शिव है। निर्विकार, विकार से रहित वो शिव है। और जो अत्यंत सात्विक, परम सात्विक, जिसके अंदर कोई किसी प्रकार का विकार नहीं है, ऐसा निर्विकार स्वरूप शिव कहलाता है। और शिव का अभिप्राय आत्मा है, और आत्मा ही शिव है। और उस आत्मा के संग जो वृत्ति है उसी का नाम गिरिजा है। इसीलिए तो आप कहते हैं आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राण शरीरम ग्रहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलं संभो तवाराधनम्। भगवान शिव आत्मा तं गिरिजामति, ये जो शरीर में आत्मा है यही तो गिरिजापति शिव है। आत्मा तं गिरिजा मति सहचरा, ये मति जो बुद्धि है ये भगवान शिव की आत्मा की सहचरी बनकर उनके संग नित्य रहकर बुद्धि गिरिजा है और आत्मा शिव है। बुद्धि गिरिजा है, यही पार्वती है। और भगवान शिव आत्मा है, भगवान शंकर विश्वास है, याद रखना। भगवान शिव का नाम विश्वास है। विश्वास के रूप में जब शिव रहते हैं तब बुद्धि श्रद्धा बन जाती है, याद रखो। और जब वही शिव शिव के रूप में रहते हैं, निर्विकार रूप में रहते हैं, तब वो आत्मा है। और उस आत्मा में स्थिर होने वाली जो मति है उसी का नाम है गिरिजा। गिरिजा वो है जो कभी शिव से कभी अलग नहीं होती है। शिव के संग रहकर शिव के साथ चलने वाली जो अत्यंत शुद्ध सात्विक मति है, उसी बुद्धि है, उसी का नाम गिरिजा है। और शंकर के संग जो निवास करे, भगवान शिव के संग रहने वाली भगवती पार्वती उमा जिनके नाम है, और उमा के रूप में जब भगवान शिव के संग में रहती हैं तो वही श्रद्धा और विश्वास के रूप में प्रणित हो जाती हैं। इसीलिए कहा वंदे भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो। वो श्रद्धा के रूप में भी है, विश्वास के रूप में। कौन है? बोले शंकर और पार्वती गौरी। वंदे भवानी शंकरो, भवानी जो के संग में, अर्थात गिरिजा के संग में रहने और इधर आत्मस्वरूप में, ये मति जो निरंतर रहती है। दोनों में शिव में और इस मति में अंतर क्या है, इन दोनों में वेद क्या है, एक छोटे से उदाहरण से समझिए। एक बार भगवान शिव कैलाश पर बैठे हैं और ये उपदेश की जो परंपरा है ना, प्रवचन की परंपरा, ये परंपरा कहां से आई, ये प्रवचन करने की परंपरा कहां से आई? बोली ये प्रवचन करने की परंपरा निकली है भगवान शिव से। सदा शिव समारंभम, शिव से ये आरंभ हुई है प्रवचन देने वाली बात, और तब से ये सनकादृशियों से आगे आगे ये क्रम बढ़ता रहा, ये धारा बढ़ती रही। और प्रवचन भगवान शिव का निरंतर किसके संग होता है? बोले माँ पार्वती के संग। शंकर उपदेश देते हैं और माँ उमा इस उपदेश को ग्रहण करती है। ये सुनती है, भगवान शिव सुनाते हैं। इनका ये सत्संग नित्य निरंतर अखंड रूप से चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। एक दिन भगवान शिव माँ उमा को उपदेश सुना रहे थे। उपदेश सुनाते सुनाते यकायक माँ ने देखा, उपदेश सुन रही थी तो कभी कभी सुनने वाले का ध्यान इधर उधर भी हो जाता। उपदेश जब सुना रहे थे भगवान शिव, तो अचानक देखा कि माँ पार्वती ने उनके शरीर में जल की एक बूंद आई, छींट पड़ी। जल की इस बूंद को देखकर माँ को आश्चर्य हुआ, आसमान की तरफ देखा, दृष्टि दौड़ाई, कहीं दूर दूर तक कोई बादल नजर नहीं आया। बिना बादल की वर्षा की बूंद देखकर माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ, और बड़े आश्चर्य के साथ माँ ने भगवान शिव से पूछा, महाराज ये बिना बादल की वर्षा कैसी, ये जल कैसा? भगवान शिव ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, हाँ पार्वती, समुद्र में मछली ने करवट बदला और उसके जल की बूंद, उसके करवट बदलने से समुद्र का पानी उछला और उसकी बूंद तुम्हारे पर गिर गई। माँ को लगा कि इतनी कितनी बड़ी मछली जो समुद्र में करवट बदले और उसकी बूंद मेरे शरीर में आकर यहाँ पहुंचे, इतनी बड़ी मछली। भगवान शिव से सुनकर उन्हें उस मछली को देखने की जिज्ञासा हो गई, उसे देखना चाहिए, वो कितनी बड़ी मछली है उसे देखें तो सही। और उस मछली को देखने के लिए भगवती हिमालय से चली, सागर के तट पर आ गई। जब सागर के तट पर खड़ी हुई देखा तो सागर के किनारे बहुत बहुत बड़ी 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 सी मछली उन्हें दिखाई पड़ी, और उन्होंने इतनी बड़ी मछली देख करके माँ ने मछली को हाथ जोड़ा कि हे मत्स्य भगवान, आप बहुत महान हैं। जैसे माँ ने सिर झुकाकर हाथ जोड़कर मछली को प्रणाम करना चाह, भगवान शिव की माया थी, माँ ने हाथ जोड़ करके सिर झुकाकर प्रणाम करना चाह तो मछली ने रोक दिया, कहा माँ नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, अन्याय नहीं करो, मेरे को प्रणाम मत करो और मेरी प्रशंसा भी मत करो कि तुम बहुत महान हो, इतनी बड़ी हो, मेरी क्या महानता है, मैं तो एक तुच्छ जीव हूँ। महानता तो सागर की है कि मेरे जैसे इसमें अनेकों मछलियां पड़ी हैं, जो अनेकों मछलियों को, मेरी जैसी मछलियों को रहने के लिए स्थान दे, ये सागर महान। तो माँ ने सागर को नमन किया। सागर को जब नमन करने लगे, प्रणाम करने लगे, तो सागर ने कहा माँ मुझे नहीं प्रणाम करो, इसमें मेरी क्या मानता है, इसमें मेरी कोई मानता नहीं, मैं तो एक सामान्य हूँ, महानता तो इस पृथ्वी की है जिसने मेरे जैसे एक नहीं सात सात समुद्र को स्थान दिया है, ये पृथ्वी कितनी महान है। तो माँ पृथ्वी को नमन करने लगी कि ये बड़ी है। जब पृथ्वी के पास पहुंची पृथ्वी को नमन करने लगी तो पृथ्वी ने कहा, माँ आप मेरे को नमन मत करो, इसमें मेरी कोई प्रशंसा नहीं, मैं बड़ी नहीं, मैं महान नहीं, महानता तो उस शेष की है जिसने संपूर्ण पृथ्वी के भार को अपने सिर के ऊपर ऐसे उठाया है जैसे कोई सरसों का दाना किसी की हथेली में रख दे। सरसों के दाने को हथेली में उठाने के समान जिसने इस संपूर्ण पृथ्वी के भार को अपने मस्तक पर लिया हुआ हो वो शेष महान है। अब तो शेष जी के पास पहुंचकर प्रथम माँ पार्वती उन्हें प्रणाम करने लगी कि हे शेष भगवान आप बहुत महान हैं। शेष जी ने कहा, माँ आप मुझे प्रणाम मत कीजिए, मेरी इसमें क्या महानता है, इसमें मेरी कोई महानता नहीं है। तो पार्वती जी अवाक होकर सोचने लगे कि ये भी कहता मैं महान नहीं, ये इसने भी बता दिया कि मेरी बड़ाई नहीं, मेरी महानता नहीं, तो आखिर महान है कौन। जब ये मन में सोचने लगी तो शेष भगवान ने कहा, माँ मेरी महानता नहीं है, महानता तो इस बात इनकी है जिनके गले में मेरे जैसे अनेकों ही लटके रहते हैं, जिन्होंने मेरे जैसों को अपने गले में लटकाया हुआ है उनकी महानता है, अर्थात जिनके पास से तुम उठ करके यहाँ तक चली आई हो, जिनके पास से तुम उठ करके चली आयो उन्हीं के पास वापस पार्वती जी को भेज दिया कि महान तो वही है, अर्थात जिससे महान कौन, वो शिव महान है जिससे अनंत वृत्तियां उदित होती है और जिसमें जाकर अस्त हो जाती है, जहां से ये सृष्टि का सृष्टि उदयमान हुई है और जहां से ये प्रकाशित हो रही है जिसमें ये लीन अस्त हो जाती है, जो इस सब का साक्षी है, दृष्टा है, वह परम चेतन, वो परम ज्ञान स्वरूप शिव ही महान है। और वो शिव क्या है, वो स्थिर है, न कहीं जाता है न कहीं आता है, वो अटल है, व्यापक है। ये जाने वाली आने वाली जो व्रति है, इस व्रति का नाम ही बुद्धि है, याद रखना। आत्मा न तो कहीं जाता है न कहीं आता है, वह तो अपने आप में स्थिर है, स्थिरता में कहीं जाना आना कुछ नहीं है, परंतु जाने आने वाली एक वृत्ति है, जो वृत्ति का अधिष्ठान केवल वो शिव ही है, और ये वृत्ति एक प्रधान रूप से नित्य शिव के संग रहती है, मिलती है, तो उस वृत्ति का नाम बुद्धि है नारायण। इसीलिए कहा आत्मा तम गिरिजा मति, ये मति ही गिरिजा है, शिव नाम अटल का है। सरल शब्दों में ये कहेंगे, शिव शब्द का अर्थ होता है जो अटल है, अचल है, स्थिर है, नित्य है, शुद्ध है, मुक्त है और परिपूर्ण है, और जो चारों कुठस्थ है, माने जिसके अंदर कुछ समाने की ताकत नहीं। इसीलिए आप लोग वाण देखते हैं ना, शिव वाण, लिंग को बाण कहते हैं। बाण नाम इसलिए पड़ा, ये राजा बलि का पुत्र हुआ जिसका नाम है बाणासुर, बाण। तो बाण ने भगवान शिव के शिव की इतनी पूजा की, बलि पुत्र ने मन में सोचा कि हम विष्णु भगवान की पूजा नहीं करेंगे, हम भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेंगे। बोले क्यों नहीं करेंगे, ये तो असुरों के साथ हम लोगों के साथ छल करते हैं। बामन भगवान ने छल करके ही, बलि को छल के ही तो पाताल भेज दिया था। इसलिए कहा कि ये तो छल करने वाले देव हैं, विष्णु का छल हमेशा मोहिनी अवतार लेकर के भी छल किया, बामन अवतार लेकर के भी छल किया, ये हमेशा विष्णु असुरों के साथ हमारे साथ अन्याय करते हैं, छल करते हैं, इसलिए हम इनकी उपासना नहीं करेंगे। तब बाण ने, राजा बलि के पुत्र ने मन में निश्चय किया कि मैं शंकर जी की उपासना करूंगा। और शिव उपासना करने के लिए उसने जबलपुर के पास में नर्मदा के जल से, नर्मदा की रेणु को लेकर के, मृतिका को लेकर रोज 125 करोड़ वो शिवलिंग बनाता था। और ये लिंग कितना बड़ा होता है, अंगुष्ठाकार, इसको कहते हैं वाण लिंग। प्रमाण है कि अंगूठे के समान, अर्थात शिवलिंग बनाता है और उनकी पूजा प्रतिष्ठा करता है और उसे नर्मदा में विसर्जित करता है। इस प्रकार उसने भगवान शिव के नित्य प्रति 125 करोड़ शिवलिंग बना करके उनकी पूजा करता है और भगवान नर्मदा में विसर्जन करते। इसीलिए नर्मदा से निकलने वाले जो नर्मदेश्वर हैं उनकी प्रतिष्ठा नहीं की जाती। कहते हैं प्रतिष्ठा करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक। सारे के सारे नर्मदा के शिवलिंग प्रतिष्ठित ही हैं, वो उसमें कोई अप्रतिष्ठित नहीं है। इसलिए परंपरा है कि नर्मदेश्वर भगवान, भगवान नर्मदेश्वर की प्रतिष्ठा नहीं होती है, उनकी बिना प्रतिष्ठा भी उनकी पूजा होती है। जैसे गंडकी नदी से मिलने वाले भगवान शालिग्राम की प्रतिष्ठा नहीं होती, वो स्वयं सिद्ध हैं। उसी प्रकार नर्मदा से जो निकलने वाले लिंग हैं वो स्वयं सिद्ध हैं, उनकी प्रतिष्ठा की बात जरूरी नहीं होती। इसीलिए उसको कहते हैं बाण लिंग, उनका नाम पड़ गया बाण, मतलब लिंग का नाम है बाण, भगवान का बाण, शिव का बाण कहते हैं। क्योंकि बाण के नाम से भगवान शिव के नाम की प्रसिद्धि हो गई। इतनी 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 पूजा की बाण ने भगवान शिव को कि भगवान का नाम ही बाण के नाम पर हो गया। इसलिए बाण लिंग कहते हैं, बाण भगवान शिव के लिंग का नाम, लिंग न कहकर भगवान शिव का बाण कहते हैं। तो इस प्रकार जब वारासुर ने भगवान शिव को प्रसन्न किया, उनसे वरदान मांग लिया, तो कहा भगवान मुझे आपके लिंग बनाने पड़ते हैं ना, तो दो हाथ से लिंग बनाने पर मुझे बहुत तकलीफ होती है, इसलिए आप मुझे 2000 हाथ दे दो। 2000 हाथ लिए उसने और 2000 हाथों से वो लिंग बनाता है, उनकी प्रतिष्ठा करता है और विसर्जन करता है। इस प्रकार भगवान शिव को प्रसन्न करके बाणासुर ने त्रिलोक की संपत्ति भगवान शिव से प्राप्त कर ली। जब सर्व विजयी हो गया, सब पर अपनी जीत हासिल कर ली, कोई उसके लिए जीतना बाकी नहीं रहा, सब कुछ जीत, सब पर उसने अपना अधिपत्य प्राप्त कर लिया, तो एक दिन बाण कहता है, प्रभु हाथ तो आपकी कृपा से मुझे 2000 मिल गए, पर इन हाथों में खुजली उठ रही है, अर्थात लड़ाई कर, इसलिए मन कर रहा है कि आपके साथ ही आओ, दो दो हाथ कर लेते हैं। वो शंकर जी के साथ में ही युद्ध करने के लिए, क्योंकि हाथ की खाज मिटाने के लिए कुछ लड़ना, तो भगवान शंकर से ही कहने लगा, आइए प्रभु मैं आपके साथ ही दो दो हाथ करते हैं। भगवान शिव ने देखा कि ये दुष्ट इस प्रकार की बुद्धि को लिए, भगवान शंकर ने कहा चिंता मत कर, आगे चल करके द्वापर में मैं श्री हरि के रूप में प्रकट होंगे भगवान, और वो तेरे हाथ की खाद क्या, वो तेरे दो दिन जो ये 2000 हाथ हैं, इन हाथों को काट कर तेरे वास्तविक 2 हाथ रह जाएंगे, बाकी जितने हाथ तुझे प्राप्त हैं वो सब तेरे काट कर समाप्त कर देंगे। वही बाणासुर है जिसने उषा अनिरुद्ध का प्रसंग भागवत में आता है, और भगवान श्री हरि कृष्ण के साथ में युद्ध हुआ, भगवान ने बाणासुर के ये अतिरिक्त हाथ जो थे उन सब को काट दिया था। बाणासुर का प्रसंग भागवत में आता है और उसकी कथा आप लोगों ने सुनी होगी। तो कहने का अर्थ था मेरा, बाण लिंग भगवान का बाण लिंग है, और लिंग का आकार ऐसा है कि बाण लिंग के ऊपर आप दूध चढ़ाओ, शहद चढ़ाओ, जो भी आप चढ़ाते हैं वो सब जैसे चढ़ाते वैसे का वैसे उतर जाता है, कुछ भी अंदर नहीं जाता। कहने का अभिप्राय है शिव वो तत्व है जो चारों ओर से दसों दिशाओं ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे दसों दिशाओं में इतना व्याप्त है कि उसे कहीं से भी उसमें कोई छिद्र नहीं दिखाई देता, पोलापन नहीं देता है दिखाता, अर्थात खोखला नहीं है उस ऐसे ठसाठस जो घनत्व है तत्व है उसी का नाम शिव है और वो शिव हमारी आत्मा है। इसलिए शिव को आत्मा से अतिरिक्त नहीं पहचानो। शिव की पहचान आत्मा के रूप में और आत्मा की पहचान शिव के रूप में प्राप्त करना ही इस प्रवचन का उद्देश्य है नारायण। इसलिए जब क्योंकि शिव कहने पर कहीं हम बहुत दूर का सोचने लगे, वो दूरस्थ नहीं है, अत्यंत समीपस्थ है, अत्यंत पास है, अत्यंत निकट है। और शंकर कहने पर जो उनका सगुण साकार रूप है, ये शंकर अर्थात जगत के कंकर मानो तो शंकर, जितने भी संसार में जो व्याप्तता शंकर की दिखाई पड़ते सगुण रूप में, भगवान शिव के पांच कार्य, शंकर के पांच कार्य हैं। भगवान उत्पत्ति की लीला करते हैं क्योंकि ऐसा प्रसंग आता है कि जब हिमालय पुत्री के संग भगवान शिव का विवाह होने जा रहा था, तो उस समय नारद जी उपस्थित थे, भगवान शिव की पार्वती के साथ विवाह हो रहा था। तो कहा महाराज, अच्छा विवाह के समय में पिता का दादा का सबका नामोच्चार किया जाता, गोत्रोच्चारण कहते हैं। जब गोत्रोच्चार करने की बात आ रही थी, नारद जी ने कहा, प्रभु बोलिए आपके पिता का नाम क्या है। तो शंकर जी सोचने लगे, मेरे पिता का नाम, मैंने सुना है कि मेरे पिता, मैं ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से पैदा हुआ तो मेरे पिता ब्रह्मा होंगे। उन्होंने कहा, महाराज पिता का नाम बोलिए। तो कदाचित भगवान शिव ने सोचा शायद ब्रह्मा ही होगा, उन्होंने ब्रह्मा जी कह दिया। कहा, महाराज इतने से काम नहीं चलेगा, उनके पिता का नाम बताओ। तो उनके पिता का नाम बताने लगे तो शंकर जी ने सोचा कि नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे तो इसलिए नारायण होगा। उन्होंने कह दिया नारायण है। कहा, महाराज इतने से बात नहीं चलेगी, तीन पीढ़ियां चाहिए, इसलिए आप अपने तीसरी पीढ़ी का नाम बताओ, उसको कौन है। पिता का नाम ब्रह्मा, दादा का नाम विष्णु, तो परदादा का नाम क्या है। तो शंकर जी सोचते लगे कि परदादा का नाम क्या होगा, मन में विचार करने लगे, इससे ऊपर तो वो भी नहीं जानते। तो शंकर जी ने कह दिया परदादा का नाम। पूछने पर उन्होंने कहा, वो तो मैं ही हूँ। शंकर जी ने उत्तर दिया, वो तो मैं ही हूँ। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये था, जिनकी कोई गोत्र नहीं, कोई कुल नहीं, जिसको कहते नकुल, अर्थात जिससे पूर्व कुछ नहीं था, ऐसे अनादि हैं शिव, जिनसे ये सृष्टि है और जिनसे पहले कुछ नहीं था, जिनके बाद कुछ नहीं है और जिनके में ही ये सब कुछ भाषित है, ऐसे तत्व रूप में भगवान शिव हैं। तो शिव के पांच कार्य हैं सृष्टि करने के लिए। पहला कार्य सृष्टि की रचना करना, उत्पत्ति स्थिति लय और अनुग्रह निग्रह, ये भगवान की पांच लीलाएं हैं। इसीलिए पंचमुखी महादेव होते हैं, शंकर के पांच मुख हैं, इन पांचों मुखों से भगवान की लीला होती है। और इसीलिए पांच पंचमुख परमेश्वर भगवान शिव है, यही पार्वती नाथ है। इनके चरणों में आज यही प्रणाम करते हैं। शेष चर्चा कल करेंगे। तवैश्वर्यम्। ऐसे शिव का ऐश्वर्य क्या है, इनका ऐश्वर्य भी देखने जैसा है, उनके ऐश्वर्य पर कल विचार करेंगे। बोलो शंकर भगवान की।
बोल मन मेरे ओम नमः शिवाय, बोल मन मेरे गाओ मन मेरे ओम नमः शिवाय, गाओ मन मेरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हे गाओ मन मेरे ओम नमः शिवाय, गाओ मन मेरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गाओ मन में ओम नमः शिवाय, गाओ मन मेरे ओम नमः शिवाय।
बोलो शंकर भगवान की।